अगली सुबह जल्दी सोने की वजह से आरवी की आँख जल्दी खुल गई। उठते ही निगाहें शान के चेहरे पर चली गईं, जो उसके चेहरे के एकदम सामने था। सोते हुए वो बहुत ही प्यारा लग रहा था और आरवी बड़े प्यार से उसको निहारने लगी। उसकी नाराज़गी अब मिट चुकी थी और कल जिस तरह से शान उसकी परवाह कर रहा था, सब याद करते हुए आरवी के लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। कुछ देर बाद उसको रात का सीन याद आया और दोबारा उस ऑकवर्ड सिचुएशन में ना पड़ जाए, यही सोचकर वो जल्दी से बाथरूम में चली गई। हालांकि पैर को ज़मीन पर रखने पर हल्का दर्द का एहसास हुआ उसे, पर उसने उसे बर्दाश्त कर लिया। कुछ देर बाद वो नहाकर आई और रेडी होने लगी। आरवी रेडी हो रही थी तभी शान की नींद खुली और वो उठकर बैठ गया। अनायासी उसकी नज़र आरवी पर पड़ी और उसको ज़मीन पर खड़ा देख उसकी भौहें तन गईं। वो तुरंत उठकर उसके पास चलाया। आरवी सिंदूरदान उठाने जा ही रही थी कि किसी ने उसे ही अपनी बाहों में उठा लिया, जिससे आरवी चौंक कर और घबरा कर बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। शान ने उसकी बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और हल्के गुस्से में बोला, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि जब तक जख्म नहीं भर जाता तुम बेड से नीचे कदम नहीं रखोगी, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की। आरवी ने बेबसी से अपना सर हिला दिया। इतने में शान ने उसको बेड पर लाकर बिठा दिया और उसको गुस्से से घूरने लगा। आरवी ने उसको गुस्से में देखा तो क्यूट सी शक्ल बनाकर बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आप बेवजह इतना परेशान हो रहे हैं। याद नहीं, आपने ही कल माफ़ी कहा था कि चिंता वाली कोई बात नहीं, बस छोटी सी चोट है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। फिर अब आप खुद इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना तो मुझे खड़े होने में कोई परेशानी है और ना ही चलने में कोई दिक्कत हो रही है। उसने शान को बड़े आराम से समझाने की कोशिश की, पर उसके भाव जरा भी नहीं बदले। शान ने उसको गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी किसी बकवास को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने एक बार कह दिया कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती अपने कदम जमीन पर नहीं रख सकती, मतलब नहीं रख सकती, दैट्स इट। इसके आगे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। और याद रहे, अगर तुमने मेरी बात को काटने की कोशिश भी की तो मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हारी जॉब छुड़वाने में। आरवी शान की बात सुनकर हैरानी से आंखें फाड़े उसको देखने लगी। उसको शान से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, वो उसको धमकी दे रहा था। आरवी ने कुछ कहना चाहा, फिर शान की बात याद आते ही खामोश हो गई। शान कुछ पल उसको घूरता रहा, फिर उसने उसके पैर को उठाकर बेड पर रखा और उसके बैंडेज बदलने लगा, जो गीली हो चुकी थी। आरवी उसका गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर एकदम अच्छे बच्चे की तरह शांत होकर बैठ गई। शान को उसकी लापरवाही पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो चुप ही रहा। पर आरवी समझ गई थी कि वो अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा है। शान ने उसकी ड्रेसिंग की, फिर जैसे ही पीछे हटा, आरवी ने एकदम से कहा, मुझे सिंदूरदान दे दीजिए प्लीज। शान के कदम ठिठक गए। उसके दिमाग में वो पल घूम गया जब उसने आरवी को अपनी बाहों में उठाया था। तब आरवी शायद सिंदूरदान ही लेने जा रही थी। यही सोचकर शान बिना कुछ कहे वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ पड़ गया। कुछ ही पल बाद वो सिंदूरदान लेकर आरवी के पास पहुंच गया। आरवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उससे सिंदूरदान ले सके, पर शान ने खुद ही चुटकी भर सिंदूर उसकी मांग में सजा दिया और सिंदूरदान वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखकर बाथरूम में चला गया। आरवी ना तो कुछ समझ सकी और ना ही कह सकी, वो स्तब्ध सी सब देखती ही गई थी। शान का उसकी मांग में यूं सिंदूर भरना किसी मिरेकल से कम नहीं था उसके लिए। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी कांपती उंगलियों से अपनी मांग को छुआ तो उसकी उंगलियों पर सिंदूर लग गया। अब कहीं जाकर उसको विश्वास हुआ कि ये उसका कोई ख्वाब नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की खूबसूरत हकीकत थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने भरी निगाहों से बाथरूम की तरफ देखा जिसका दरवाज़ा बंद था। इसके साथ ही उसको याद आया कि कैसे शान उससे नाराज होकर बिना कुछ बोले बाथरूम में चला गया था। अब आरवी परेशान हो गई कि उसको कैसे मनाए। कुछ देर बाद शान फ्रेश होकर बाहर आया। यहाँ उसके कपड़े तो थे नहीं तो वो घर जाकर नहाने वाला था। अंशु का भी स्कूल था तो उन्हें सुबह जल्दी ही निकलना था, इसलिए शान सीधे अंशु के पास चलाया जो अभी सो रही थी। वो जैसे ही अंशु को जगाने के लिए आगे बढ़ा, आरवी जो तब से उसे ही देख रही थी, उसने उसको रोकते हुए कहा, रहने दीजिए ना, घर चलकर उठा दीजिएगा, थोड़ी देर और सो लेंगी। शान ने कुछ कहा तो नहीं, पर अंशु को अपनी बाहों में उठा लिया और आगे बढ़ गया। आरवी पीछे ही रह गई और वो बस जाते ही शान को देखे जा रही थी कि शान उससे इस कदर नाराज था कि उसको जाने तक को नहीं कहा। जैसे ही शान ने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, आरवी ने पीछे से उदास लहजे में कहा, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अंगद के आगे बढ़ते हाथ एक पल को रुके, फिर उसने दरवाज़ा खोलते हुए सख्त लहजे में कहा, पैर दिए हैं भगवान ने तुम्हें, तो खुद से आ सकती हो, कोई दो साल की बच्ची नहीं कि तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर घूमता फिरूं। शान की बात सुनकर आरवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से कहा, हाँ, आपने ही मुझे पैर नीचे रखने से मना किया है और अब खुद ही मुझे ताने मार रहे हैं। कल से तो खुद ही मुझे हर जगह उठाकर ले जा रहे थे और अब मुझे टॉन्ट मार रहे हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ। उसके कहे शब्द शान के कानों में पड़े तो उसके आगे बढ़ते कदम ठहर गए। अगले ही पल उसने आरवी की तरफ मुड़कर भावहीन निगाहों से उसको देखते हुए कहा, हाँ मना किया है मैंने, पर मेरी बातों की तुम्हारी नज़रों में वैल्यू ही क्या है। मना तो मैंने कल भी किया था, पर तुमने किया तो वही जो तुम्हें करना था, मेरी बातों की तो कोई अहमियत ही नहीं। और रही बात तुम्हें उठाकर घूमने की, तो तुम्हें तो वैसे भी मेरा तुम्हारी परवाह करना पसंद नहीं था, तो अब नहीं कर रहा परवाह, जाओ जो चाहे करो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें और ना ही कुछ कहूंगा। इतना कहकर शान रूम से बाहर निकल गया और आरवी बस उसको देखती ही रह गई। नीचे जाकर शान ने अंशु को बैक सीट पर लिटाया और अनुपमा जी से जाने की इजाज़त ले ली। वो तो नाश्ता करके जाने को कह रही थी पर वक्त नहीं था उनके पास, इसलिए शान ने कभी और पर बात टाल दी। अनुपमा जी ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहा। शान कुछ पल गाड़ी के पास खड़ा आरवी के आने का इंतजार करता रहा, पर जब आरवी बाहर नहीं आई तो उसे ही वापस अंदर जाना पड़ा। रूम में आरवी अब भी वहीं बैठी थी जहां शान उसको बिठा कर गया था। शान ने अभी उसको वहीं बैठे देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए कहा, इतनी देर से मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम अब तक यहीं बैठी हो। शायद तुम भूल गई तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मुझे घर जाकर रेडी होकर ऑफिस भी जाना है और अंशु का स्कूल भी है। आरवी जो सर झुकाए बैठी शान की नाराजगी के बारे में सोच रही थी, उसके कानों में शान की आवाज पड़ी तो उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ निगाहें घुमाई। सामने ही शान खड़ा उसको गुस्से से घूर रहा था। आरवी के कानों में अभी उसकी कही बातें घूम रही थी। उसने उदास निगाहों से शान को देखते हुए कहा, आप और आपकी कही हर बात मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा अहमियत रखती है। जब आप मेरी परवाह करते हैं तब मैं कैसा महसूस करती हूँ उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ उसके लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, पर मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस आपको बेवजह परेशान नहीं करना चाहती थी। आप मेरी परवाह करें तो ठीक है, पर जरूरत से ज्यादा हर चीज हानिकारक होती है।
मेरे पैर में इतनी भी चोट नहीं लगी कि मैं चल ना सकूं, फिर भी आपके कहने पर मैंने कल रात को वॉशरूम जाने वाले वक्त के अलावा एक बार भी अपने कदम जमीन पर नहीं रखे थे। पर सुबह दर्द आराम था इसलिए मैं खुद से चली गई, पर फिर भी आपको बुरा लगा उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपकी नाराजगी मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। आरवी की आंखों में नमी तैर गई। सच में जब शान उससे मुंह मोड़कर चला गया था तो बहुत तकलीफ महसूस हुई थी उसे। शान ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसको अपनी बाहों में उठा लिया। कल से लेकर अब तक में पहली बार आरवी ने उसके गर्दन पर अपनी बाहों को लपेट दिया। शान सामने की तरफ देखते हुए आगे बढ़ गया। वहीं आरवी ने सूनी उदास निगाहों से उसको देखते हुए कहा, आप अब भी मुझसे नाराज हैं? शान खामोश रहा। मिस्टर मल्होत्रा सॉरी ना, अब माफ भी कर दीजिए प्लीज। शान अब भी खामोश रहा। आरवी कुछ पल सोचती रही कि अब उसको कैसे मनाए। फिर एकाएक उसने अपना सर ऊपर उठाकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उसके गले से लग गई। उसके अचानक ऐसा कुछ करने की उम्मीद शान को नहीं थी। वो स्तब्ध सा रह गया और हैरानी से निगाहें झुकाकर उसको देखने लगा, पर आरवी ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में पूरी तरह से छुपा लिया था और उससे लिपटी हुई थी। आरवी ने उसके गर्दन में सर छुपाए हुए ही धीमी आवाज में कहा, माफ कर दीजिए ना प्लीज, आई प्रॉमिस दोबारा कभी आपकी कोई बात नहीं काटूंगी, बस आज माफ कर दीजिए। आरवी के लब लगातार हिल रहे थे जो शान के गर्दन को स्पर्श कर रहे थे, और उसके लबों की गर्म लम्स से शान की धड़कनें बढ़ गई थीं। शरीर के ताप को बढ़ते हुए वो साफ महसूस कर पा रहा था। आरवी की अनजाने में की इस हरकत ने उसे उत्तेजित कर दिया था। शान की पकड़ आरवी पर कस गई। अपने बहकते जज्बातों को काबू करने की कोशिश करते हुए शान ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। आरवी क्या कर रही हो, ठीक से रहो। इतने देर में अब जाकर शान के लबों से कुछ निकला था। आरवी ने तुरंत ही सर उठाकर उसको देखा और क्यूट सी शक्ल बनाकर बोली, अब तो आप नाराज नहीं है ना। शान उसकी मासूमियत देखकर हैरान था। उस लड़की को अंदाजा भी नहीं था कि अभी अभी उसने क्या किया और उसका क्या नतीजा हो सकता था। यहां उसने अपनी हरकत से शान की सांसों को अटका दिया था और अब भी उसको बस माफी की पड़ी थी। इतनी मासूम सी शक्ल, उस पर उसकी इनोसेंट हरकतें, बेचारा शान उससे नाराज होता भी तो कैसे। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भर दी तो आरवी खुशी से एक बार फिर जैसे ही उसने गले लगने को हुई, शान ने एकदम से चिल्लाया,